नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों से रूस से तेल खरीद बंद करने और उस पर प्रतिबंध लगाने को कहा। यूक्रेन युद्ध समाप्त होने तक चीन पर 50-100% शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव किया। बाल्टिक सागर में रूस के सबसे बड़े तेल टर्मिनल पर यूक्रेन ने किया अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। म्यांमार के पश्चिमी रखाइन प्रांत में 2 निजी बोर्डिंग स्कूलों पर सैन्य हवाई हमले में 19 विद्यार्थी मारे गए। और भारत के लक्ष्य सेन हांगकांग बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज नाटो देशों से रूस से तेल खरीद बंद करने और उस पर प्रतिबंध लगाने को कहा। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध समाप्त होने तक चीन पर 50-100% टैरिफ लगाने का भी प्रस्ताव रखा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें भारतीय तेल की खरीद पर 25% टैरिफ भी शामिल है। हालांकि अमरीका ने चीन के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है। ट्रंप ने नाटो सदस्यों से सामूहिक रूप से काम करने का आग्रह किया। ट्रंप ने कहा कि रूस पर चीन के प्रभाव को कम करने के लिए नाटो को उस पर भारी टैरिफ लगाना चाहिए। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया है कि वो पूरे नाटो क्षेत्र की रक्षा करेगा। अमेरिका का यह बयान पोलैंड में रूस के संदिग्ध ड्रोन घुसपैठ के बाद आया है। अमेरिका के राजदूत डोरोथी शी ने परिषद से कहा कि अमेरिका इन खतरनाक हवाई क्षेत्र उल्लंघनों के मद्देनजर नाटो सहयोगियों के साथ खड़ा है। अमेरिका की यह टिप्पणी नाटो सहयोगियों को आश्वस्त करने का प्रयास है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पोलैंड में रूस की ड्रोन घुसपैठ एक गलती हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस से तेल खरीद के लिए भारत पर भारी शुल्क लगाने से दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं, लेकिन उन्होंने दोनों देशों के बीच जारी व्यापार वार्ताओं पर सकारात्मक रुख अपनाया। एक निजी टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत पर 50% शुल्क लगाना अमरीका के लिए कठिन फैसला था। श्री ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव बनाने के व्यापक प्रयास के तहत अपने कदमों का बचाव करते हुए कहा कि वे रूस पर शुल्क सहित आर्थिक उपायों से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस बीच भारत में अमरीका के राजदूत पद के लिए राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा नामित सर्जियो गोर ने बृहस्पतिवार को सीनेट में भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया। श्री गोर ने रक्षा और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का भी वादा किया। यूक्रेन ने बाल्टिक सागर स्थित रूस के सबसे बड़े तेल टर्मिनल पर ड्रोन हमला किया है। ये इस महीने हुए बड़े ड्रोन हमलों में से एक है। एक रिपोर्ट।
यूक्रेन की सुरक्षा सेवाओं के अनुसार कल हुए हवाई हमले में लेलिनग्राद क्षेत्र में प्रिमोक्स तेल बंदरगाह को निशाना बनाया गया, जो बाल्टिक पाइपलाइन प्रणाली का अंतिम स्टेशन है। ये रूस के समुद्री निर्यात का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी माना जाता है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूसी क्षेत्र में भेजे गए 221 ड्रोनों में से आधे से अधिक को ब्रोंस और स्मोलेंस क्षेत्रों में रोक दिया गया, जहां कथित तौर पर लुकोइल के प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया गया था। यूक्रेनी सुरक्षा सेवाओं ने कहा कि ड्रोन हमलों ने एस्टोनियो की सीमा के पास उस लुका टर्मिनल को बिजली देने वाली कई पंपिंग स्टेशनों को भी निशाना बनाया गया है। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह।
अमेरिका में भारतीय नागरिक चंद्र नागमलैया की हत्या के 2 दिन बाद उनके हत्यारे को देश से निकालने और वापस क्यूबा भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। टेक्सास के डलास में बुधवार को 41 वर्षीय नागमलैया पर जानलेवा हमला कर उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया था। 37 वर्षीय अवैध प्रवासी योर्डानिस कोबोस मार्टिनेज को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में एक बार फिर आपका स्वागत है। म्यांमार की सेना ने पश्चिमी रखाइन प्रांत में 2 निजी आवासीय स्कूलों पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में 19 विद्यार्थियों के मारे जाने की खबर है। 20 से ज्यादा विद्यार्थी घायल हुए हैं। अराकान आर्मी और राहत एजेंसियों के अनुसार यह हमला कल देर रात हुआ। पीड़ितों की उम्र 15 से 21 वर्ष के बीच बताई जा रही है। स्थानीय मीडिया के अनुसार एक सैन्य जुंटा विमान ने हाई स्कूल पर 500 पाउंड के 2 बम गिराए। ये स्कूल अराकान आर्मी के दावे वाले इलाके में स्थित है जो म्यांमा की सैन्य जुंटा सरकार के साथ संघर्षरत है। इन स्कूलों को भारी नुकसान पहुंचा है, आसपास के कई घर भी नष्ट हो गए। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे क्रूर हमला बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्रीमती सुशीला कार्की नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल को उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।
मैं आज नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला जी का आना महिला सशक्तिकरण का बहुत उत्तम उदाहरण है।
नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सभी दलों से 5 मार्च 2026 को होने वाले प्रतिनिधि सभा के चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सहयोग की अपील की है। राष्ट्रपति ने सभी दलों से सावधानीपूर्वक और संयम के साथ चुनाव संपन्न कराने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में मानवाधिकार वकील और यूएन वॉच के कार्यकारी निदेशक हिलेल नेऊर ने इजरायली हमलों के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा कतर का समर्थन करने के बाद पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक देश बताया है। इससे पहले बृहस्पतिवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक अन्य बैठक में इजरायल के राजदूत डैनी डेनन ने कतर हमले का बचाव करते हुए इसकी तुलना पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमरीका के हमले से की थी। सऊदी अरब आभूषण प्रदर्शनी जेद्दा सुपरडोम में चल रही है। बृहस्पतिवार को शुरू हुई 3 दिन की इस प्रदर्शनी का आयोजन जेद्दा में भारतीय महावाणिज्य दूतावास और रियाद में भारतीय दूतावास के सहयोग से रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद स्थानीय संस्था के साथ मिलकर कर रहा है। भारत और दुनिया भर के 200 से अधिक प्रदर्शक इसमें शामिल हैं। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में आज हजारों लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में आयोजित रैली में हिस्सा लिया। ये इसराइल और हमास के बीच गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे बड़ी रैली है। मध्य ऑकलैंड में आयोजित मार्च फॉर ह्यूमैनिटी रैली में लगभग 50,000 लोग शामिल हुए। न्यूजीलैंड पुलिस ने रैली में 20,000 लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया था। रूस के कामचटका क्षेत्र के पूर्वी तट के पास आज सुबह 7.4 तीव्रता का भीषण भूकंप आया। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप कामचटका क्षेत्र के प्रशासनिक केंद्र पेट्रोपावलोवस्क कामचत्स्की से 111 किलोमीटर पूर्व में 39.5 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के बाद कामचटका क्षेत्र के स्थानीय अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी जारी की है। हांगकांग ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में ताइवान के चोउ तिएन चेन को 23-21, 22-20 से हराया। लक्ष्य सेन अब फाइनल में चीन के ली शिफेंग से खेलेंगे। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच दुबई के शेख जायद स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर श्रीलंका ने गेंदबाजी का फैसला किया है। बांग्लादेश ने श्रीलंका को 140 रन का लक्ष्य दिया। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 2 ओवर में बिना विकेट पर 4 रन बना लिए हैं। दुबई में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों से रूस से तेल खरीद बंद करने और उस पर प्रतिबंध लगाने को कहा। यूक्रेन युद्ध समाप्त होने तक चीन पर 50-100% शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव किया। बाल्टिक सागर में रूस के सबसे बड़े तेल टर्मिनल पर यूक्रेन ने किया अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। म्यांमा के पश्चिमी रखाइन प्रांत में 2 निजी बोर्डिंग स्कूलों पर सैन्य हवाई हमले में 19 विद्यार्थी मारे गए। और भारत के लक्ष्य सेन हांगकांग बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।